आइए, आज आपकी मुलाकात करवा रही हूँ उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर जी के साथ, जो भारत के पौराणिक रुद्र वीणा वादन को जीवित रखने वाले कुछ कलाकारों में से एक हैं। उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान, बैजू बाबरा सम्मान समेत कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। उस्ताद डागर जी ध्रुपद परंपरा में रुद्र वीणा बजाते हैं। स्पिक मैके के अगले सप्ताह होने वाले एक कार्यक्रम में उनका रुद्र वीणा वादन है। तो आइए मुलाकात करते हैं उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर जी के साथ। उस्ताद जी नमस्कार।
नमस्ते
उस्ताद जी, आप रुद्र वीणा बजाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि रुद्र वीणा तो बहुत ही पुराना पौराणिक वादन है और बहुत ही कम कलाकार हैं जो इसको बजाते हैं, तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे?
देखिए, ऐसा है, ये एक वाद्य को ही इसको हम यंत्र मानते हैं, तो उसके बजाने वाले कम है उसी की वजह से, मतलब शिष्य ढूंढ के सबको रुद्र वीणा देनी जाती है।
हाँ।
तो उस हिसाब से पहले उसी के चलते ही शिष्य हमेशा कम रहे वीणा में
जी।
हाँ, और थोड़ा समय लगता है इसको करने के लिए, मतलब अन्य इंस्ट्रूमेंट वाद्य छोड़कर इसको थोड़ा ज्यादा समय लगता है सीखने में, करने में आपको 10-15 साल देने पड़ते हैं।
हाँ।
तो इसी के कारण कम लोग सीखते हैं
जी। रुद्र वीणा यंत्र किस तरह से सितार या उस तरह के वाद्य से किस तरह से अलग होती है ये?
इसमें देखिए, इसको एक्चुअली अंग्रेजी में जिथर स्टिक इंस्ट्रूमेंट के कैटेगरी में है। एक लंबी दांड है और दो तुम्बे हैं
जी,
और फिर इसके ऊपर जो इसको यंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वर के जो उतरे हुए और जो चढ़े हुए जो स्वर है रागों में, उनका प्रमाण देती है कि ये कौन सा स्वर कहा, जैसे कि तोड़ी की ऋषभ का है या भैरव की ऋषभ का है, उसका स्थान कहा है।
अच्छा।
तो ये इसकी खासियत है बेसिकली। तीसरी बात कि इसका रेजोनेंस काफी है, तो इसमें आलापचारी का ज्यादा गुंजाइश है, ज्यादा देर गाने के नजदीक किसको मतलब माना जाता है, तो ये इसमें रेजोनेंस ज्यादा होने से। एक और चीज है कि जो पुराने प्राचीन काल में जो गायक होते थे उनको ये वाद्य सिखाया जाता था कि ताकि उनके स्वर के स्थान सही हो जाए। और एक्चुअली रुद्र का अर्थ होता है संस्कृत में जो चीज आपको रिफाइनमेंट की तरफ ले जाए, वो एक इसका है कारण, क्योंकि इसको बजाने के लिए थोड़ा धैर्य लगता है और थोड़ा एक मैच्योरिटी लगती है और अपनी तरफ से खुद का एक डिसीजन चाहिए कि मुझे यही करना है
जी।
दूसरे वाद्य जो है जैसे सितार है, ये हमारे यहाँ पर्शिया से आया, सरोद है ये रबाब से आया, और रुद्र वीणा जो है ये हमारे देश का वाद्य है। 800 साल से ज्यादा प्राचीन नहीं है, इसके पहले मतंगी वीणा होती थी, उसके पहले किन्नरी वीणा होती थी, क्योंकि एक्चुअल सही चीज कहे तो जो तार का वाद्य है उसे हम वीणा कहते हैं, जैसे संतूर है उसे शततंत्रीय वीणा कहते हैं, सरोद है उसे घर्षणी वीणा कहते हैं, सारंगी के है अपने यहाँ तो उसको हम गज वीणा कहते हैं क्योंकि बो के साथ बजाई जाती है
जी।
और रुद्र वीणा में जैसे मैंने कहा आलापचारी काफी है।
तो जो हम ध्रुपद गायकी की बात करते हैं, ध्रुपद शैली की बात करते हैं, उसमें क्या आता है?
ध्रुपद में देखिए बेसिकली ये घराना के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हमारे यहाँ जो डागर वाणी है जिसको हम साधारण गीति कहते हैं उसमें ज्यादा आलापचारी के ऊपर काम होता है, तो आलाप जोड़ झाला मेन पोर्शन रहेगा।
हाँ।
और जो लयकारी होगी उसको एक साधारण तरह से पेश करेंगे, ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं, सिंपल गत टाइप होगी या सिंपल कॉम्पोजिशन होगा, उसी के साथ उसको बजाया जाएगा
जी।
जो दरभंगा स्टाइल है उसमें ऐसा है कि आलापचारी थोड़ी बहुत होती है, फिर उसके बाद जो लयकारी डेढ़ गुण दो गुण चौगुण इस तरह की चीजें उसमें ज्यादा चलते हैं। विष्णुपुर में ज्यादा कॉम्पोजिशन के ऊपर ज्यादा वजन है, और उसमें जैसे कॉम्पोजिशन में छंद बदलते हैं उस तरह से पखावाजी उसके साथ चलता है
जी।
तो इस तरह से ध्रुपद में जो शैली है वो अलग अलग तरह से आपको
जी
वो बताती है कि उसमें क्या होता है।
अब क्योंकि हमने रुद्र वीणा की बात की और जैसे आपने कहा ही है कि बहुत लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है और बजाने वाले तो बहुत ही कम है, तो उसको अगर हम सुन सकते हैं, आप बजा सकते हैं हमारे लिए?
हाँ, बिल्कुल।
बात की है कि ध्रुपद शैली में सुर सिंगार के बारे में कुछ बताएंगे?
नहीं, सुर सिंगार एक प्राचीन वाद्य था जिसकी जो बजाने का जो घर्षणी वीणा में आती, जिसका जो तुम्बा होता है वो सुरभार की तरह बड़ा होता है और उसकी जो प्लेट होती है वो सरोद की तरह मेटालिक प्लेट होती, ब्रास की प्लेट है, इसको बफिंग करते हैं।
हाँ।
और उसके अंदर 6 तार होते हैं मेन स्ट्रिंग, और उसके सरोद में जैसे आड़ा होता है इसके ऊपर जवारी का ब्रिज होता है जिसके ऊपर फाइलिंग की जाती है टोनल क्वालिटी की है। और बहुत ही पतली आवाज होती है, धीमी आवाज होती है बहुत, लेकिन बहुत लंबा रेजोनेंस होती है इसमें। यूजुअली काली 1, काली 2 या सी शार्प डी में मिलाई जाती है, और इसको प्राचीन जमाने में वॉइस के साथ अकंपनिंग में इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए अभी लास्ट मतलब जो लास्ट जनरेशन में थे, बाबा अलाउद्दीन हजा बजाते थे
जी।
उसके बाद हमारे पिताजी के एक शागिर्द है जोड़ी स्टेकर करके अमेरिका में, वो बजाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी ये थोड़ा बहुत लुप्त हो रहा है तो इसको वापस इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए
जी।
और उसको बना के रखे क्योंकि इसके बनाने वाले आगे नहीं रहेंगे, तो अगर कोई सीखने आएगा तो बता सकते किस तरह से बजाना मुमकिन है
जी। गुरु शिष्य परंपरा का क्या महत्व है आज के दौर में, क्या ये संभव हो पाता है?
बहुत महत्व है, बिल्कुल संभव होना। अगर जो चीज अगर उतनी गहराई में जानी हो और करनी है
जी,
तो आपको उसको गुरु शिष्य परंपरा में, क्योंकि ये जो विद्या है ना ये सीना बसीना चलती है, आप उसको लिख के पढ़ा के नहीं कर सके, उस शिष्य को संस्कार लेने पड़ते हैं उस चीज के लिए। सिर्फ संगीत सीखते समय सिर्फ संगीत नहीं सीखता है, एक उसका एक स्वभाव बनाना पड़ता है, उसका उसकी हर चीज, उठना बैठना खाना उसकी बातें हर चीज को शेप करते 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 उसको इस साज में या इस परंपरा में उसको लाना पड़ता है। क्योंकि अगर वो शिष्य आपकी तरह सोचेगा नहीं, आपकी तरह उसके विचार नहीं रहेंगे
जी,
तो फिर वो मुश्किल है वो बनना। वो तो सीख तो लेगा लेकिन उसका कर नहीं पाएगा, क्योंकि डिफरेंस ये होता है कि आपने मतलब कोई चीज जमा तो कर ली सीख के, लेकिन उसको आप उसका उसको कैसे उसको इस्तेमाल कैसे करना है
जी,
या उस चीज को कैसे काम में लाना है, एक्शन सीखना वही होता है। हाउ टू कन्वर्ट योर नॉलेज इनटू समथिंग दैट बिकम्स प्रैक्टिकल, उसमें समय लगता है क्योंकि उसका स्वभाव बनाना पड़ता है, उसके स्वभाव के हिसाब से चीजें रखनी पड़ती है। तो अगर आप गुरु शिष्य परंपरा में नहीं सीखेंगे तो ये चीजें आधी अधूरी सिखाई जाएगी, तो वो सीख के निकल जाएगा फिर उसको आगे, क्योंकि गुरु का दायित्व तो होता है मार्गदर्शक, सिखाना नहीं, सिखाने से पता मार्गदर्शक होता है कि ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसलिए इम्पोर्टेंट है गुरु शिष्य परंपरा
जी जी।
वरना आप चाहो तो स्कूल में भी सीख सकते हो और इतने सारे कॉलेजेस भी है जहाँ सिखाया जाता है, लेकिन वहां से कलाकार तैयार नहीं होते
जी। एक साधना चाहिए, उसकी तरफ पूरा लगाव चाहिए, और दोनों जी, और शिष्य और गुरु दोनों की ही प्रगति होती है इस तरह से।
हाँ सही बात है
जी,
क्योंकि वो चीज बदलेगी थोड़ी 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 बदलेगी, अगर उसके उसको आप सिखाएंगे तो उसमें से वो थोड़ी चीज बदलेगी, और वो कितनी बदल सकती है और उसको कहाँ पर काटना चाहिए बदलने को और कहाँ उसको अलाउ करना चाहिए, ये हमेशा नजर में रहना चाहिए गुरु के, कि वो थोड़ा अगर बाहर गया यहाँ गया वहां गया तो क्या होना चाहिए
जी,
नहीं गया तो क्या होना चाहिए, उस हिसाब से
जी अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहकर उसमें नए नए प्रयोग संभव हो सकते हैं जी, बिल्कुल।
और ये चीज ऐसी कि अगर आप गुरु के घर पे जाके सीखोगे तो वहां के संस्कार में वहां के वातावरण में वो आसानी से हासिल होती है ये चीजें
जी। अगर संगीत की प्रगति चाहिए तो उसके लिए ये परंपरा का पालन करना बहुत जरूरी है, जड़ों के साथ जुड़ना भी बहुत जरूरी है जी।
क्योंकि उसका वो तरीका ही है सिखाने का, अगर आप वो तरीका तोड़ दोगे तो कोई सिखाने के लिए कुछ बचेगा नहीं उसमें
जी। बहुत सारे पसंदीदा राग होते हैं, किसी खास राग की तरफ आपका विशेष झुकाव हो जाता है, यानी कोई बहुत पसंद है आपको किसी विशेष कारण से, जिसको आप जब बजाते हैं तो उसमें एक अलग ही तरह का आपको आनंद मिलता है।
एक राग मुझे बहुत पसंद है जो मेघ, क्योंकि उसके बारे में खूब कहानियां सुनी हमने, मेघ बजाने से बदल भर जाते हैं, बारिश का बुलाव आता है। और ये भी दादाजी बोलते थे कि हमारे दादाजी जो थे जियाउद्दीन खान साहब जो उदयपुर पैलेस में थे एज ए कोर्ट म्यूजिशियन, वो मेघ बहुत अच्छा बजाते थे। तो बचपन से मुझे बड़ा ही इस राग के लिए मुझे ऐसा एक उसमें खोज रहती है कैसा किस तरह से बजाया जाए।
क्या कभी आपके साथ में ऐसा अनुभव हुआ, क्या कुछ इस तरह की घटना हो सकती है?
एक बार हमारे उस्ताद ने इस राग को गाया था, मैं 6-7 साल का था और उन्होंने करीब अप्रैल के एंड में इस राग को कहीं गाया था और बोले थे देखना बेटा आज बारिश गिरेगी। अच्छा। हम लोगों ने उस समय, ये 1977 की बात है, 76-77 की, हम लोग ने न्यूज़पेपर चेक किया, न्यूज़ चेक की तो वहां पर कहीं पर भी बरसात का कुछ उल्लेख नहीं था। और मतलब गर्मी का मौसम है, ठीक आप गर्मी के बीच में हो, अप्रैल एंड मई की शुरुआत में, और उस दिन बारिश हुई। तो मेरे ख्याल से एक जैसे हम कहते ना किसी के गाने से बारिश होती है, तो मेरे ख्याल से रिवर्स होता है। मेरे ख्याल से अगर आप प्रकृति के साथ आपका एक संबंध है
जी,
तो आपको एक संकेत मिलता है कि आपको ये चीज करनी है और फिर वो अपने आप को प्रकट करती है।
तो वो जो
एक सेंसिटिविटी होती है इंसान की, जब वो उसके साथ प्रकृति के साथ वो जुड़ जाती है, तब हम कहते हैं कि उसके गाने से हुआ, लेकिन वो ऑलरेडी आई थिंक वो डिजाइन होता है और वो पहले से आप उसको घटा नहीं सकते, मतलब बना नहीं सकते
जी। यूं कहें कि उन सुरों के साथ में आप यूं बंध जाते हैं कि प्रकृति आपसे वही करवा रही है जो आगे आने वाला है। आपके साथ बात करके तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी और बहुत बहुत आपके समय के लिए धन्यवाद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।